ललितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांक सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, हमें आने में देर हो गई, हमें समझ नहीं गया इतनी देर हो गई। आप कब से रुके हैं? तो हम जिस स्थान में बैठे हैं ये है कल्याणी सरोवर। देखिए कितने सुंदर ढंग से ये बनाया हुआ है, ये घाट वगैरह कितने अच्छे हैं और कितने साल लगे होंगे इसे बनाने के लिए। लेकिन जो उस समय के राजा आदि हुआ करते थे वो एक पीढ़ी की बात नहीं सोचते थे, वो अनेक पीढ़ियों की बात सोचते थे। और इतने वर्षों के बाद भी ये अभी सरोवर इतने अच्छे ढंग से लोगों की सेवा में है और कितने बुद्धिमान थे वो। ये पानी कहाँ से आता है आपको पता है, जितने भी यहाँ पहाड़ हैं सबसे पानी उतर के यहाँ अंदर आता है। वहाँ भी एक स्थान है जहाँ से ऊपर का पानी अंदर से बहते हुए एक नाले के द्वारा यहाँ अंदर चले आता है। वैसे कई चीज़ें और ये कल्याणी सरोवर के बारे में बताई गई हैं, बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने में आती हैं। और वहाँ जो मंदिर आप ऊपर देख रहे हैं, वैसे हम यही सोच रहे थे कि सबका पीठ वहाँ हो रहा है, वो नरसिंह मंदिर है, योग नरसिंह मंदिर। आप सब जानते हैं इस मंदिर को, ये योग नरसिंह मंदिर ऊपर। वैसे टाइम टेबल में वहाँ जाने का तो कोई प्लान नहीं था। हाँ, 17 तारीख सुबह को हम जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप में से कोई भक्त चढ़ न पाए, लेकिन यदि चढ़ पाए तो बहुत अच्छा है। और जो नहीं चढ़ पाते कोई बात नहीं, आपके लिए अन्य भक्त सारी प्रार्थना वगैरह करके आएंगे। और यदि आप चढ़ पाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप 1-2 घंटे पहले शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बैठ के आप ऊपर जा सकते हैं। 5-5 सीढ़ियाँ एक समय ऐसे करके आप पहुँच सकते हैं। ये नरसिंह देव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, योग नरसिंह। प्रहलाद जी ने स्वयं इस विग्रह की सेवा की थी, इनकी इच्छा के अनुसार यहाँ आए और नरसिंह देव भगवान यहाँ प्रकट हुए। और ऐसे कहा जाता है कि बहुत शक्ति प्रदान करते हैं ये। एक मुसलमान राजा थे इस प्रांत में जिनका नाम था टीपू सुल्तान। वो जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके हाथियाँ जो है बहुत बीमार पड़ गए, तो किसी ने उनसे कहा कि आप वहाँ योग नरसिंह पर प्रार्थना कीजिए। ऐसे किए, उनके हाथी ठीक हो गए। तो उन्होंने एक वाद्य भेंट किया और आज भी वो वाद्य बजता है इस नरसिंह मंदिर में। तो कल जब हम वहाँ जाएंगे तो नरसिंह स्तुति करेंगे, लेकिन यहाँ पे आज जब भी बैठे हुए हैं बहुत ही रम्य वातावरण है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम जहाँ से सुबह को कथा विराम किए थे वहाँ से आज चालू करेंगे। कथा में हम ये बता रहे थे कि पौराणिक कथाएं क्या है, चेलुव नारायण और तिरु नारायण मूर्तियों के बारे में। ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, स्वतः भगवान श्री स्वयं ब्रह्मा जी ने इनकी उपासना की थी और फिर वो यहाँ पे आए थे और स्वयं श्री कृष्ण श्री राम के द्वारा पूजे गए थे। ये तो हम समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ, कितने महत्वपूर्ण विग्रह हैं और मंदिर हैं ये दोनों। रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में रहा करते थे तो उनका आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ता रहा। श्रीरंगम में आने के पहले क्या हुआ, उनका जन्म, उनकी तरुण अवस्था की लीलाएं और उनकी दीक्षा, और यमुनाचार्य, इससे पहले यमुनाचार्य के साथ में उनके मिलने का प्रयास, यमुनाचार्य की इच्छाएं, रामानुज के प्रति उनका संन्यास लेना, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। परंतु रामानुजाचार्य की कथा उस समय से प्रारंभ करेंगे जबकि वो संन्यास ले चुके थे, उनका आंदोलन प्रारंभ हो गया था श्रीरंगम में। और ये आंदोलन क्या था कि भगवान कृष्ण या विष्णु या नारायण की भक्ति के शुद्ध शुद्ध भक्ति का पथ सबको दिखाना। और रामानुजाचार्य बहुत शक्तिशाली आचार्य थे, वो हर क्षेत्र में निपुण थे, संसार के क्षेत्र में बड़े बुद्धिमान थे, साथ साथ जहाँ तक विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की बात है, तर्क के माध्यम से उन्होंने इस भक्ति के सिद्धांत को स्थापित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने उपदेशों में या अपने शिक्षाओं में रामानुज संप्रदाय के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए हैं। एक है शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, जो कि कर्म ज्ञान आदि से मिश्रित नहीं है, और दूसरा है वैष्णव सेवा। इन दोनों बातों पर श्री संप्रदाय के भक्त बहुत जोर देते हैं। रामानुजाचार्य ने आलवारों के और यमुनाचार्य के रचनाओं के आधार पर ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को एक बहुत सुंदर रूप दिया, जिसके कारण वैष्णव पंथ जो है बहुत बढ़ते चले गया। उस समय दक्षिण भारत में मायावादी प्रचार बहुत चल रहा था और इस भाग में विशेष करके जैन और बौद्ध लोग बहुत अधिक संख्या में थे। तो रामानुजाचार्य जब वहाँ थे तो उस सारे राज्य के एक राजा थे जिसका नाम था, किसी को याद है? नहीं, हम श्रीरंगम की बात कर रहे हैं। जब रामानुजाचार्य वहाँ थे, कोलटुंग उनका नाम था। वैसे वो तो शैव थे और ऐसे कट्टर शैव थे कि वो विष्णु या कृष्ण के नाम को सुनते ही उनको क्रोध आ जाता था। वो बहुत द्वेष करते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे वैष्णवों के प्रति। वैष्णवों का नाम सुन के ही उनको बुरा लगता था। और एक दिन ऐसे आया कि उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में हर एक व्यक्ति को केवल शिव की ही उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक पत्र निकाला और जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान लोग थे, उनके पास ये पत्र भिजवाया और इस पत्र में उनको सही करना था। और इस पत्र में लिखा क्या था, क्या लिखा था, किसी को याद है? शिवात परतरम नास्ति। जब हम ब्रह्मचारी लोग यहाँ आए थे तो इस समय कथा हुई थी यही कथा। शिवात परतरम नास्ति, इसका मतलब है कि शिव से बढ़कर कोई नहीं है। तो सही करने का मतलब है कि मैं मानता हूं कि शिव ही परम है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। शिवात परतरम न अस्ति, शिव से ऊंचा कोई नहीं है। तो अनेक लोग थे, अपने जान के भय से उन्होंने सही तो कर दिया। कई लोग थे, उन्होंने सोचा हमने सही कर दिया तो राजा की अच्छी दृष्टि हमारे ऊपर होगी, हो सकता है हमें कुछ लाभ मिले, राजा हमें कोई पद दिलाए, हमें कोई धन दे दे, तो उन्होंने भी सही कर दिया। ऐसे थोड़े लोगों ने इस कारण से या उस कारण से सही कर दिया। थोड़े लोगों ने सोचा कि हमें सही नहीं करना है ऐसी बात, तो वो उस राज्य से ही चले गए बाहर। तो उनके एक मंत्री थे उस राजा के, जिनका नाम था नलूरन। अब भाग्य से ऐसा हुआ कि वो रामानुज के एक शिष्य जिनका नाम था कुरेश, और हम कुरेश के बारे में काफ़ी आगे भी सुनने वाले हैं इन कथाओं में, कुरेश के शिष्य थे नलूरन। तो रामानुज के शिष्य कुरेश के शिष्य नलूरन, और ये नलूरन इस राजा के कोलतुंग के दरबार में एक मंत्री थे, और उन्होंने वो रहे गद्दार, गद्दार बोलते हैं ना, गद्दार, श्री वैष्णव पंथों के प्रति वो गद्दार बन गए। उन्होंने क्या कहा राजा से, उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे सब लोगों से पत्र लेने से क्या मतलब है, आपको यदि आपकी इच्छा पूर्ण करनी है तो रामानुज और कुरेश इनसे आपको सही लेनी होगी। ये लोग यदि इसको सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है सारे श्री संप्रदाय या सारे ये वैष्णव जो हैं ये सब मान जाएंगे, लेकिन ये नहीं सही करेंगे तो फिर आपका कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर तुरंत रामानुजाचार्य ने क्षमा कीजिए, राजा कोलतुंग ने रामानुज के आश्रम में अपने सिपाहियों को भेजा कि यहाँ रामानुज को बुलाया जाए। तो जब ये सारे सिपाही रामानुजाचार्य के आश्रम में आए श्रीरंगम में, तब तक रामानुजाचार्य कांचीपुरम छोड़ के श्रीरंगम में आए थे, वो वहाँ श्री वैष्णव पंथ के आचार्य बने थे। तो उस समय जबकि ये लोग आए उनके आश्रम में, वो स्नान कर रहे थे और कुरेश उनको स्नान का पानी गर्म करा के दे रहे थे। आप तो जानते हैं उस समय में नल आदि शावर वगैरह सब नहीं था, तो पानी निकाल के कहीं से ला के देना पड़ता था। फिर जीवन बहुत सरल था उस समय और सुखी भी था। आजकल थोड़े बाथरूम ऐसे होते हैं, जो विदेश में जग गए हैं कईयों के घर में पता नहीं चल रहा क्या करना चाहिए, इतने बटन्स होते हैं, उसमें लिखा भी नहीं होता है कुछ, और कभी कभी हम डर के मारे कभी यहाँ कहाँ से पानी आए पता नहीं चलता है, और वो भी ठंडी, और ठंडी के समय में कहीं ठंडा पानी आ जाए, उतना ठंड है पानी, तो कहाँ से क्या दबाएं, कैसे उसको ये करें, कुछ समझ में नहीं आता। इतने बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, विशाल होते हैं, और तरह तरह की समस्याएं, ये सुविधाएं होती हैं, किताब रखने के लिए स्टैंड होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, टीवी होता है, बड़े बड़े बाथटब होते हैं। तो खैर, लेकिन जितना ये बढ़ जाता है समस्याएं भी वैसी बढ़ती रहती हैं। लेकिन रामानुज के आश्रम में ऐसे कोई खास सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जीवन बहुत सुखी था, जब तक कि कोलटुंग राजा के आदमी नहीं आए। तो जब आए तो रामानुज स्नान कर रहे थे वहां पर, तो एक भक्त ने आकर अंदर कुरेश के कानों में कहा कि ऐसे ऐसे राजा कोलतुंग के लोग आए हैं और वो ऐसे पत्र लेकर आए हैं और वो तुरंत रामानुज को बुला रहे हैं दरबार में। अब रामानुज और अन्य भक्तों के कानों में खबर तो पहुंच गई थी कि शिवात परतरम नास्ति पत्र के ऊपर वो सब जगह जाके सबकी सही ले रहे हैं। तो जैसे ही कुरेश ने सुना, उन्होंने रामानुजाचार्य को नहीं बताया। रामानुजाचार्य स्नान में लगे हुए थे तो कुरेश ने क्या किया, तुरंत रामानुजाचार्य के कपड़े पहने। वैसे कुरेश गृहस्थ थे तो उनके सब कपड़े सफेद थे, परंतु उन्होंने जल्दी से बिना रामानुज को बताए हुए रामानुज के गहरे वस्त्र पहन लिए, उनका दंड हाथ में ले लिया और बाहर चले गए और उन सिपाहियों से कहा, मैं रामानुज हूँ, चलो हम जाते हैं। और उस समय रामानुज के गुरु वहाँ थे महापूर्ण, तो महापूर्ण ने कहा मैं भी चलता हूँ। यद्यपि महापूर्ण इस समय काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी महापूर्ण ने कहा मैं भी आता हूँ। तो महापूर्ण वहाँ गए उनके साथ में, और जैसे ही वो आगे चले गए राजा के राजधानी में जो काफ़ी दूर था वहाँ से, तब तक रामानुजाचार्य ने स्नान कर लिया, वापस आए, देखा कि मेरे कपड़े कहाँ गए, कौन ले गया मेरे कपड़े, यहाँ तो केवल सफ़ेद कपड़े पड़े हैं। तो फिर उनके भक्त दाशरथ ही थे वहाँ, उनके शिष्य, वो उनके भांजे भी थे वैसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है और कुरेश आपके वस्त्र पहन के वो चले गए हैं और महापूर्ण अभी गए हैं वहाँ। तो रामानुजाचार्य बड़े शोक करने लगे, अरे अरे अरे, अब ये वो जानते थे कि ये राजा का स्वभाव कैसे है, कितना क्रूर है ये व्यक्ति और कितना कट्टर है। तो उन्होंने सोचा कि अरे अब कुरेश और महापूर्ण का क्या होगा, तो शायद ऐसे लगता है कि आज मैं यहाँ पे ठीक से नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी सफ़ेद वस्त्र पहनने होंगे और इस तरह से मुझे बच के रहना होगा। कभी कभी इसका मतलब है कि ये ऐसी बातें केवल आजकल के समय में नहीं होती, पुराने समय में भी होते थे जब साधुओं को दूसरे वस्त्र पहन के जाना पड़ता था। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था चालू कर दी तो उनके भक्तों को अनेक ऐसे देशों में जाना पड़ रहा था जहाँ बहुत भय था, बहुत खतरा था, धोखा था। जैसे रूस में उस समय साम्यवाद था रूस, और लोग पैंट शर्ट में जाया करते थे, एक साधारण आदमी की तरह वो जाया करते थे, अपने वैष्णव पोशाक में नहीं जाते। यहाँ तक कि सन्यासियों को भी ऐसे करना पड़ता था, बल्कि आज भी ऐसे होता है। कई ऐसे देश हैं जहाँ सन्यासियों को भी जाना पड़े तो कपड़े बदल के जाना पड़ता है, सन्यासी वेश में नहीं जा सकते, जैसे अरब देशों में और ऐसे कई और देश हैं। तो खैर ये एक समस्या है सन्यासियों के लिए कि कपड़े बदल के कोई जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रचार के लिए कभी जाना पड़ता है। बलराम देश में ऐसे होता है ना, अभी उन्होंने सारे अरब देशों को उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं भक्तों ने, बहरीन को बलराम देश और दुबई को दामोदर देश, ऐसे सारे नाम दिए हैं। और फिर कहते हैं हम दामोदर देश जा रहे हैं या बलराम देश जा रहे हैं। तो फिर वहाँ जाते समय सन्यासियों को भी कपड़े पैंट शर्ट डाल के जाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ अंदर तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पता नहीं क्या भी करें, कुछ गिरफ्तार भी कर लें, बेलगाम की भाषा में ना क्या भी करेंगे, इसलिए आदत पड़ गई। तो इसलिए उनको वस्त्र बदल के जाना पड़ता है। तो रामानुजाचार्य ने भी सोचा मुझे भी ऐसे वस्त्र बदल के रहना होगा ताकि राजा के आदमी मुझे पहचाने नहीं। लेकिन दाशरथी ने कहा नहीं नहीं, केवल वस्त्र बदलने की बात नहीं है, आपको यहाँ से निकल के दूर जाना होगा, नहीं तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि वो आप नहीं थे, वो कुरेश थे, तो वो ज़रूर आपको ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे, आपको ढूंढ निकालेंगे, आपकी जान की खतरा है, इसलिए तुरंत आप यहाँ से निकल जाइए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो रामानुज ने कहा हाँ सही है, तो तुरंत वो यहाँ से आगे निकल गए, एक क्षण भी और रहे नहीं वहाँ पे, और शीघ्र ही जितने भी शिष्य वहाँ उपस्थित थे सब एक साथ निकल पड़े और उत्तर की दिशा में वो सब चले गए। उधर कुरेश और महापूर्ण राजा के दरबार में पहुंचे। पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो ज्यादा समय नहीं लगा नालूरन को बताने के लिए कि ये रामानुज नहीं है। और जैसे ही सिपाहियों को पता चला कि ये रामानुज नहीं है और हमारे साथ धोखा हुआ है, तो तुरंत वो फिर से निकल पड़े उनकी ढूंढ में, उनके उनके खोज में। तो ढूंढते ढूंढते वो उनका पीछा कर रहे थे, तब उस समय रामानुज आचार्य अपने शिष्यों के साथ से तेजी से चलते चलते जा रहे थे। इस समय रामानुज आचार्य की आयु 80 की थी, 80 साल के थे वो, फिर भी चलते चलते बड़े हृष्ट पुष्ट थे, फिर भी चलते चलते तेजी से वो लोग जा रहे थे। और एक ऐसे नदी पार करके जा रहे थे जो सूख गया था, तो ऐसे सूखे हुए नदी में के बीच में जब वो थे, तो उन्होंने पीछे दूर देखा कि सिपाही भाग के आ रहे हैं उनके पीछे। तो रामानुज आचार्य ने कहा अपने शिष्यों से, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। वैसे इसके पहले कि वो श्रीरंगम पिट से निकले, रामानुज आचार्य जल्दी से रंगनाथ का दर्शन करके गए थे कि हे रंगनाथ देव, अभी आप ही देखिए आपको कैसे निपटाना है इस क्रूर और मूर्ख व्यक्ति से, जो ऐसे नास्तिकवाद का प्रचार करेगा, जो वैष्णवों को के प्रति ऐसे अपराध करेगा। और मैं भी आपके स्थान से निकल रहा हूँ क्योंकि और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो जब अब दूर जाके देखा कि ये सिपाही लोग आ रहे हैं पीछे, तो रामानुज ने अपने शिष्यों से कहा कि हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है। तो उन्होंने जमीन से वो बालू या रेती ले लिया और एक मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि आप भी सब ये रेती ले लो और इसी मंत्र का उच्चारण करो। ऐसे करके यहाँ उन्होंने फिर वो रेती को नीचे फेंक दिया और आगे चले। और जैसे ही ये सिपाही आए वहां पे, तो ऐसे मानो को उनके पैर वहां अटक गए और हिले ही नहीं वहां से, जैसे कभी कीचड़ होता है एक प्रकार का कि वहां से आप हिल नहीं सकते, आप पहुंच जाते तो बस अंदर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो उन सिपाहियों के साथ भी ऐसे हो गया और ये कहने लगे, अरे अरे ये ब्राह्मणों ने कोई जादू टोना कर दिया है हमारे ऊपर, यहाँ से निकल पड़ो, अब इनके पीछा इनका पीछा नहीं कर सकते। तो ये लोग भी डर के मारे वापस चले गए। तो थोड़े समय के लिए तो फिर रामानुज सुरक्षित रहे। वो आगे चलते गए, आगे चलते गए और कई दिनों के बाद नीलगिरी पर्वत के पास में वह आए। वहाँ पे पर्वत के नीचे जब पहुँचे तो जंगल था, घने जंगल में प्रवेश किया। ऐसे घने जंगल में से जाते जाते, क्योंकि रामानुजाचार्य के साथ में अनेक शिष्य थे, 45 के करीब शिष्य थे, तो अंधकार में भी या जंगल के रास्ते में सब इधर उधर बिखर गए। तो एक दल इधर चला गया, दूसरा दल वहां चला गया रामानुज के साथ में, और जो दल दूसरी जगह से चला गया रामानुज के साथ में, वो रामानुज से पिछड़ गए। तो वो लोग बड़े बेचैन थे कि अब रामानुज आचार्य कहाँ गए, अब बहुत दुखी हो गए सभी लोग। उधर रामानुज आचार्य भी सोच रहे थे कि अभी सारे वैष्णव कहाँ गए। तो वहां पर चलते 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 अचानक वो जो दूसरा दल था भक्तों का, जो रामानुज आचार्य के शिष्य थे, वो ऐसे खेत में आ पहुंचे जहां वो वन के निवासी खेती कर रहे थे। और दैव से हुआ ये कि ये सारे लोग जो खेती कर रहे थे, वो रामानुज आचार्य के एक शिष्य नल्लम चक्रवर्ती के शिष्य थे। और नल्लम चक्रवर्ती बहुत वृद्ध थे, इस समय थे नहीं वहां पे, लेकिन वो प्रसिद्ध इसलिए थे कि एक बार कांचीपुरम के पास में जो एक नदी है, वल्काई नदी, उसमें से उन्होंने देखा कि एक शव आ रहा है, एक मृत शरीर, और ये शरीर ब्राह्मण का नहीं था, किसी दूसरे का था, तथा कथित नीच जाति वाले का था। लेकिन उसके शरीर के ऊपर मुद्राएं थीं शंख चक्र गदा पद्म की। तो उन्होंने समझ लिया कि ये श्री वैष्णव हैं। तो उन्होंने शव को निकाला बाहर और वैदिक पद्धति के अनुसार, वैष्णव पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि क्रिया, ये अंतिम क्रियाएं कर दें। तो ये कई कट्टर जो ब्राह्मण थे उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि नहीं, केवल एक ब्राह्मण को ऐसे क्यों करना चाहिए अन्यों के प्रति। परंतु नल्लम चक्रवर्ती ने सोचा कि ये श्री वैष्णव है, वैष्णवों के बीच में ऐसे कोई भेद नहीं है। और फिर वहाँ जो वरदराज थे, कांची के अधिष्ठाता देव, उन्होंने अपने शिष्यों से, अपने पुजारी से कहा कि आप जिस चीज़ को बुरा समझते हो, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ। नल्लम चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो भेदभाव आदि हो रहा है अज्ञान के वश, ये भगवान की इच्छा नहीं है। केवल ऐसे लोगों की इच्छा है जो पूरी तरह से भक्ति भावना में नहीं है, भक्ति का ज्ञान उनको नहीं है, भक्ति का दृष्टि नहीं है, भक्ति की दृष्टि उनकी नहीं है। तो खैर, ये नल्लम चक्रवर्ती के शिष्य यहाँ पर रहा करते थे इस जंगल में। तो उन्होंने देखा ये सब ब्राह्मण आ रहे हैं, उन्होंने पूछा आप सब कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा हम सब श्री वैष्णव हैं, हम श्री रंगम से आ रहे हैं। अच्छा, श्री रंगम से आ रहे हैं, तो वहाँ रामानुज कैसे है? तो उन्होंने कहा श्री रंगम की बात छोड़िए, रंगनाथ की बात छोड़िए, ऐसे श्री रंगम का क्या मूल्य जिसको कि रामानुज को इस तरह से त्याग के भागना पड़ा, क्योंकि वह उस राज्य के राजा ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। तो उनको सुन के आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, क्या बात है। तो उन्होंने बताया और बताया कि साथ साथ में हम तो रामानुज के साथ में आ रहे थे, परंतु इस जंगल के घने अंधकार में हम बिछुड़ गए, वो वहाँ चले गए, अब हम यहाँ हैं, हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत इन लोगों ने भी अपना परिचय दिया, ये वैष्णवी बड़े प्रसन्न हुए उनको मिलके, और वो वनवासी जो वैष्णव थे उन्होंने तुरंत एक दल बनाया और सब जगह फैल गए जंगल में रामानुजाचार्य और उनके अन्य शिष्यों को ढूंढने के लिए। ऐसे पूरे 6 दिन बीत गए ढूंढते ढूंढते ढूंढते, केवल रात में विश्राम करते, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे 6 दिन उन्होंने बिताए, 6ठे रात को जब पास में आए, उन्होंने एक आग लगाई क्योंकि ठंडी काफी हो रही थी। तो आग लगाकर साथ में बैठे थे तो उन्होंने थोड़ी आवाजें सुनी कि लोग बात कर रहे हैं, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे उनको लगा कि ये भी कोई ब्राह्मण ही होने चाहिए। मतलब आदमी के बोलने के ढंग से पता चलता है ना कि उसका स्तर कैसा होता है। तो उन्होंने पता कर लिया कि हाँ हाँ, ये कोई ब्राह्मण ही है। तो उसी समय रामानुज और उनके शिष्य, उन्होंने भी थोड़ी आवाज़ें सुनी और वहाँ रोशनी थोड़ी देखी, तो वहाँ भी उस तरफ चले आए। और ये जो वनवासी थे जो रामानुजाचार्य को ढूंढने के लिए आए थे, उनको मिलके उन्होंने देखा कि वाह, आप सब कहाँ से आए हैं? हम श्रीरंगम से आए हैं। अच्छा, तो वहाँ रामानुज कैसे है? तो फिर उन्होंने कहा कि रामानुज को वहाँ से जाना पड़ा और यही है रामानुज, और ऐसे इशारा करके दिखाया। तो वो सारे श्री वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने पूरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया उनको, और उनको थोड़ा बहुत वहाँ के जितने भी वो भोजन लाए थे उनके लिए वो थोड़ा बहुत उनको दे दिया, और रात भर उन्होंने वहाँ विश्राम किया। और फिर दोनों दल अगले दिन सुबह मिले, और फिर से और 6 दिन जंगल के बीच में से उनको लेते लेते वो वनवासी वैष्णव उनको आगे ले गए उनके जो नेता थे उनके पास। लेकिन वो नेता उस समय थे नहीं, उनके प्रमुख और उनकी पत्नी वहाँ थी। तो इन्होंने वनवासियों ने जाकर उस वनवासियों की जो महारानी थी, रानी थी, उनके पास इन श्री वैष्णवों को सौंप दिया कि आप अच्छी तरह से इनका देखभाल कीजिए, ये हमारे गुरु जी हैं और ये हमारे सब श्री वैष्णव हैं, तो इनका ख्याल रखिए आप। तो थोड़ी देर में वो आदिवासियों के राजा थे वो आ गए और उन्होंने देखा कि ये सब ब्राह्मण हैं, हमारे घर में कैसे उनको खिलाएं। तो बस पास के गांव में ही एक ब्राह्मण रहा करते थे, तो इन्होंने सारे वैष्णवों को वहां भिजवा दिया और साथ साथ बहुत अन्न आदि सब साथ में भेज दिया। और वहां उस ब्राह्मण के घर में अच्छी तरह से प्रसाद की व्यवस्था चल रही थी। तो जब वो वहां पहुंचे रामानुज और उनके शिष्य, उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिनका नाम था कोंगिल। तो कोंगिल ने इनसे देखा, अच्छा आप श्रीरंगम से आए हैं, आप किन के हैं, आप रामानुज के शिष्य हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा मैं भी रामानुज के शिष्या हूँ। तो अच्छा, तो रामानुज ने भी चाहा कि चलो सुनते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कथा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि क्या हुआ। हमारे प्रांत में एक बार अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने के बाद हम लोग इस प्रांत को छोड़कर चले गए थे और श्रीरंगम में आए थे। और श्रीरंगम में हम एक मकान में दूसरे मंजिल में रहते थे, तो वहाँ पे हम खिड़की से रोज देखते थे कि रामानुजाचार्य भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। वो गरीब से गरीब घरों में भी जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन सड़क में जब जाते थे तो छोटे आदमी हो या बड़े आदमी हो, बड़े बड़े राजा जन भी हो, वो भी आके प्रणाम करते थे उनको। तो अचानक मैंने देखा कि रामानुजाचार्य मेरे घर में ही आ रहे हैं, तो जल्दी से मैं नीचे दौड़ के गई, दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनका स्वागत किया। और स्वागत करके जब भिक्षा थोड़ी बहुत दे दी, फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। तो रामानुजाचार्य ने कहा, कहो बेटी क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो प्रश्न ये है कि आप गरीब से गरीब लोगों के घर में जाते हो भिक्षा मांगने के लिए, जबकि अमीर से अमीर लोग और बड़े राजा और राजकुमार भी सड़कों में आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो रामानुजाचार्य ने कहा, क्योंकि मैं सबके पास जाके थोड़ी भगवान की कथा करता हूँ, भगवान के बारे में बताता हूँ, इसलिए ऐसे होता है। और मैं गरीबों के घर में भी जाता हूँ तो उसी उद्देश्य से जाता हूँ, भगवान की थोड़ी कथा कहने के लिए वहाँ जाता हूँ। तो फिर कोंगिल ने कहा कि आप मुझे भी बताएंगे? तो उन्होंने कहा अवश्य। तो रामानुजाचार्य ने फिर थोड़ी अच्छी बातें भगवान के बारे में उनको बताई और फिर द्वय मंत्र आदि जो श्री वैष्णव पंथ का होता है वो भी दिया और रामानुज फिर से चले गए। उधर थोड़ा समय बीत गया और कोंगिल और कोंगिल के पति को पता चला कि अब उनके प्रांत में अकाल अब खत्म हो चुका है, बारिश भी आ गई, अब अपने प्रांत में लौटने का समय आ गया है। परंतु वो सोच रहे थे कि रामानुजाचार्य ने मुझे सिखाया मैं भूल गई हूँ। ऐसे कभी कभी हमारे भक्त दूसरी दीक्षा लेते हैं फिर गायत्री मंत्र भूल जाते हैं, क्या क्या मंत्र का उच्चारण किया था, क्या मंत्र था। तो खैर वो कहने लगे कि फिर मैं दोबारा एक बार मैंने देखा कि रामानुज फिर से आए मेरे घर में भिक्षा के लिए, तो दोबारा मैं नीचे गई और उनसे पूछा कि आप कृपया दोबारा मुझे बताइए क्योंकि मैं भूल गई हूँ। तो उन्होंने बड़े कृपा से दूसरी बार मुझे ये कथा बताई, मंत्र भी दिए मुझे और साथ साथ उनके पादुकाओं जो मुझे दे दिए। तो वो पादुकाएं मेरे पास हैं और उनकी सेवा मैं करती हूँ। इसके बाद हम लोग वहाँ से चले। तो अभी तक वो कोंगिल ने रामानुजाचार्य को पहचाना नहीं था क्योंकि उस समय घटना से काफ़ी समय हो गया था और रामानुजाचार्य तो सफ़ेद वस्त्र में बैठे थे। तो फिर उन्होंने कहा आप मेरे यहाँ प्रसाद पाएंगे? तो रामानुज ने कहा ठीक है। तो वो अंदर चली गई कोंगिल रसोई घर में। तो रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य से कहा कि वहाँ जाओ और अंदर बहुत गौर से देखना कि ये क्या करती है और कैसे रसोई करती है और मुझे आके बताना। तो वो जाके बड़े ध्यान से देख रहे थे कि महिला अब क्या करेगी। तो सबसे पहले कोंगिल ने जाके स्नान किया, स्नान करके आके साफ वस्त्र पहन लिए। साफ वस्त्र पहनने के बाद थोड़ा जल अर्पण किया, आचमन किया और श्री रामानुज रामानुजाचार्य का गुणगान करके उनके पादुकाओं को अर्पण करके अपने चरणों में उन्होंने ऐसे अपने सर के ऊपर स्वीकार किया रामानुज का, जय जय जयकार करते हुए। और फिर सारे उन्होंने घर को भी पूरा साफ कर दिया गोबर और पानी से, और जितने भी नए पत्र थे मिट्टी के वो सारे लिए पात्र, और उनमें फिर सब्जियों को जो भी है अन्न आदि था उसको धो के उसको काट के पकाया। और पकाते पकाते भी वो जितने भी आलवारों की स्तुतियां हैं, जिनके भी गाने हैं, रामानुज का गुणगान है, वो गाते रहे सारे रसोई के समय। जैसे जब रथ यात्रा में या जन्माष्टमी में कभी भी जब हमारी माता जी लोग सब सब्जी काटती हैं, किचन में रसोई करते हैं, तो कैसे कुछ ना कुछ कीर्तन चलते रहता है और कोई ना कोई ऐसे एक दिव्य वातावरण होता है। आशा करते हैं कि रसोई करते समय प्रभु जी लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये कोंगिल ऐसे कर रही थी और ये शिष्य थोड़ी दूर से देख रहे थे। फिर जब रसोई करना हो गया समाप्त, तो फिर उन्होंने बर्तनों में भर दिया नए वाले पात्रों में, और उनको जाके रामानुजाचार्य के पादुकाओं के सामने अर्पण किया और अर्पण करके लाए। और फिर उन शिष्यों से कहा कि ये अभी प्रसाद तैयार है। तो जब वो शिष्य रामानुजाचार्य के पास में आए तो उन्होंने पूछा कि बताओ मुझे सारा रिपोर्ट दे दो कि क्या किया कोंगिल ने, तो सब कुछ बताया। फिर उस शिष्य ने कहा कि अंत में मैं देख नहीं पाया कि उसने क्या किया, सारा भोजन तैयार करके उसने अर्पण किया, लेकिन अंधकार में किन चीजों को वो अर्पण कर रही थी मैं ठीक से देख नहीं पाया। तो फिर रामानुजाचार्य ने कोंगिल को बुलाया और बुलाकर बताया कि बेटी तुमने अभी जो भोजन अर्पण किया किसको अर्पण किया? मैंने मेरे गुरु रामानुजाचार्य के पादुकाओं को अर्पण किया, और उसके बाद मैं अभी ये प्रसाद सबको दे रही हूँ। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, कहो दिखाओ तो सही पादुकाएं। तो पादुकाएं लाई, क्योंकि रामानुजाचार्य जानते थे कि उनके शिष्य शायद संशय कर रहे होंगे कि वास्तव में रामानुजाचार्य की शिष्या हैं कि नहीं। तो पादुकाएं ले रामानुज ने पहन लिए। हाँ सही है, ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है। फिर भी कान में कहा कि देखो मेरे शिष्यों के लिए ये बताओ कि रामानुजाचार्य तुम क्या उपदेश दिया था। फिर कोंगिल ने उन मंत्रों को जोर से कह दिया, फिर भी अभी ये बताओ कि क्या तुम रामानुजों को पहचान नहीं पा रही हो? तुमने कहा नहीं है क्या रामानुज यहाँ, कहाँ है कहाँ है? तो रामानुज ने अपना परिचय किया कि मैं ही हूँ। तो कोंगिल को इतना आश्चर्य हुआ, तुरंत प्रणाम करने लगी, कहा कि नहीं वो तो बहुत समय पहले था और सफ़ेद कपड़े, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। तो बहुत आनंदित हो गई कोंगिल और सबको बड़े प्रसन्नता से उन्होंने खिलाया। रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि देखा अभी तुम लोग सब ले लो प्रसाद, लेकिन रामानुज ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनका अर्पण किया हुआ था। तो फिर ये बुद्धिमान थी कोंगिल। तो कोंगिल ने कहा ठीक है, आपके लिए मैं फल दूध आदि बनाती हूँ, आपके भगवान को ही भोग चढ़ा के मैं आपको देती हूँ। तब जाके रामानुजाचार्य ने थोड़े दूध और फल आदि स्वीकार कर लिए। तो ऐसे वहाँ थोड़े समय के लिए वो रहे, फिर वहाँ उस घर से वो आगे निकल पड़े। निकल के आगे चलते चलते वो मिथिला शालिग्राम गांव में आए। आज ये दो गांव हैं यहाँ पास के, मिरले और शालिग्राम।
ये उड़पी के पास
नहीं, वो शालिग्राम अलग है, उड़पी के के पास में जो शालिग्राम है वो अलग है और यहाँ का शालिग्राम अलग है और नेपाल का शालिग्राम अलग है। हम अभी अभी नेपाल से ही आए काठमांडू से, लेकिन शालिग्राम नहीं जा पाए, काठमांडू से बहुत दूर है। वो शालिग्राम गांव है जहाँ की शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं गंडकी नदी में, और मुक्तिनाथ क्षेत्र कहलाता है। मुक्तिनाथ की मूर्ति है, भगवान की विष्णु मूर्ति है, तो बहुत पावन क्षेत्र है। वो भी एक दिव्य देशम में से एक है। और जब शालिग्राम की बात आती है तो वहाँ किसी ने हमें बताया कि यहाँ कोई चुनाव चल रहे हैं ना अभी, तो चुनाव में एक कोई ऐसे नेता है, उन्होंने घोषणा की है कि जिस तरह से मुसलमान को हज के लिए सुविधा दी जाती है और ईसाइयों को जेरूसलम जाने के लिए सुविधा दी जाती है, हम हिंदुओं को शालिग्राम जाने के लिए सुविधा देंगे नेपाल में, शालिग्राम और मुक्तिनाथ। तो ऐसे उनके चुनाव के वायदे हैं। तो वो हमको वहाँ कोई बता रहे थे कि शालिग्राम में भी शायद हो सकता है और लोग आएंगे नेपाल। तो खैर, वहाँ का शालिग्राम और यहाँ का शालिग्राम ये अलग है, लेकिन फिर भी ये पावन स्थान माना जाता है। तो चलते चलते रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ शालिग्राम और मिर्ले स्थान में आए। अब जब इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कट्टर वीर शैव हैं सब, और उनका स्वागत की बात तो दूर है, लोग उनकी ओर देख भी नहीं रहे थे, प्रतिकूल भाव से उनका वहाँ स्वागत हुआ। और रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि कैसे इनका परिवर्तन किया जाए, और ये बिल्कुल भगवान कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, इतने कट्टर हैं ये लोग। और उनके व्यवहार से ऐसे पता चला कि एक अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे थे उनकी ओर। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य दाशरथी को बुलाया और कहा कि देखो, यहाँ इस गांव में एक कुआं है और इस कुएं में से ये सभी लोग, एक छोटा सा कुंड है और इस कुंड में से सभी लोग अब पानी लेते हैं, उसमें से वो भोजन पकाते हैं, पीते भी हैं, सब उनके कार्य इससे करते हैं। तो तुम ऐसे करना, जब कोई नहीं देख रहा है ना, उस समय जाके तुम्हारे पैर उस जल में डाल के ले आना बाहर, केवल अपने पैर अंदर डालो और बाहर चले आना। तो दशरथ ने किया, गुरु का आदेश है, जाके अपने पैर अंदर रखे थोड़ी देर के लिए और फिर वापस चले आए जब कोई नहीं था वहां पे, किसी ने देखा नहीं। और फिर अगले दिन सभी लोग आए पानी लेने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए भोजन आदि। और फिर उसके बाद सारे भक्तों ने देखा कि गांव के निवासियों का जो भाव है वैष्णवों के प्रति, वो थोड़ा बदल रहा था, धीरे 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 से बदलने लगा, और जो एक वैर के समान एक भावना थी वो कम हो गई और प्रतिकूल भावना परिवर्तित हो गई और लोग अनुकूल बन गए। और इतना ही नहीं, कई लोग वैष्णव भी बन गए। और ये कैसे हुआ? एक वैष्णव के चरणों के जल से। तो ये दाशरथ ही अपने आप से नहीं कर रहे थे, रामानुज ने अपने आप ऐसे नहीं किया, रामानुज ने दाशरथ ही से कहा, क्योंकि उनके शिष्य भी एक से बढ़कर एक थे, कोई साधारण ऐसे लोग नहीं थे वो, कुरेश, दाशरथी। तो खैर, तो यहाँ पे वो आए, सारे उस गांव में, शालिग्राम के गांव में उन्होंने देखा इतना परिवर्तन हो गया और बड़े प्रसन्न हुए। सारे वैष्णव इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और ये बात सबको पता चली कि नहीं, मुझे पता नहीं कि ऐसे दाशरथी ने किया था इसलिए ऐसे परिवर्तन हो गया, कि यह भी था तो शायद रामानुजाचार्य ने इसको गुप्त ही रखने के लिए कह दिया होगा। ले परंतु जो भी है, परिवर्तन तो कितना हो गया। तो इसलिए आप जानते हैं कि जब गंगा जी का
प्राकट्य होना था पृथ्वी लोक के ऊपर, भगीरथ ने गंगा जी से निवेदन किया था, तो उस समय गंगा जी ने कहा था कि मैं आऊंगी, परंतु दो शर्त है। एक है कि मेरे पानी का प्रवाह इतना तीव्र रहेगा कि ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो मेरे पानी के प्रवाह को रोक सके जब मैं स्वर्ग लोक से ऊपर नीचे गिरूंगी पृथ्वी के ऊपर। और दूसरी बात कि मेरा डर ये है कि जब मैं पृथ्वी लोक के ऊपर बहती हुई जाऊंगी तो अनेक पापी लोग मेरे जल में स्नान करने के लिए आएंगे, उनके पाप धो डालने के लिए। तो ऐसे पापों का बोझ इतना बढ़ता जाएगा कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो ये दो उपाय निकालो इसके लिए। तो भगीरथ ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, हम इसका उपाय निकाल लेंगे। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है कि हम शिव जी से प्रार्थना करेंगे, वो आशुतोष हैं, वो अवश्य उनकी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लेंगे। और ऐसे ही किया, इसलिए शिव जी का नाम है गंगाधर। और दूसरी बात, जहां आपकी दूसरी समस्या है, वो ये है कि पापी लोग आपके जल में पाप रख के चले जाएंगे। इसके लिए उपाय है कि जब शुद्ध वैष्णव आपके जल में आके स्नान करेंगे तो ये सारा पाप तो धुल जाएगा और साथ साथ जल भी पावन हो जाएगा। तो ये महान वैष्णवों के शक्ति होती है। लेकिन हाँ, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम जब कोई जगह में स्नान करते हैं तो वो जगह पावन हो जाता है। तो खैर, ये ऐसे वैष्णवों के लिए है जैसे दाशरथी हैं, गुरेश हैं, रामानुजाचार्य हैं, ऐसे महान भक्तों के लिए। और वहाँ पे आनंद आंध्रपूर्ण नाम के उनके एक शिष्य बने जो आगे चल के बहुत उनके प्रमुख शिष्यों में से हुए, वो भी शालिग्राम गांव से ही भक्त बने। और उस समय शालिग्राम पहुंचने के बाद रामानुजाचार्य ने बहुत तीव्रता से प्रार्थना की थी कि मुझे पता नहीं अब वहाँ क्या चल रहा होगा राजा कुलोत्तुंग के दरबार में। कुरेश और मेरे गुरु महापूर्ण वहाँ तो चले गए हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, क्या खतरा है, क्या उनको कोई हानि पहुँची है, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि शीघ्र ही आप कृपया इस दुष्ट राजा का अंत कर दीजिए, आप ही निपटा लीजिए। जब श्रील प्रभुपाद जी बम्बई में जुहू मंदिर की स्थापना कर रहे थे तो वहाँ बहुत समस्याएं हुई। आप में से जिन भक्तों ने प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पढ़ा है आप अवश्य जानते होंगे, बहुत सारी समस्याएं जो उस जमीन के मालिक थे उनसे उन्होंने खरीद लिया, और खरीदने के बाद फिर इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर ली। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन नरसिंह देव से प्रार्थना की कि आप जरा निपटा लीजिए, जो आपको करना जरा कर लीजिए, और नरसिंह देव ने निपटा लिया। और फिर आगे चल के राधा रास बिहारी मंदिर अच्छी तरह से हो गया। तो ऐसे अक्सर होता है, और जमीनों के बारे में और मंदिरों के साथ में तो होता ही होता है, सबको अनुभव है। तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि भगवान को कुछ ऐसे करना चाहिए, कृपया आप ऐसे कुछ कर दीजिए, क्योंकि सारे वैष्णव जो हैं बड़े दुखी हैं इस समय, कोई अब खुलेआम भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा या उपासना नहीं कर सकता है। तो भगवान ने तो उनकी बात सुन ली, लेकिन थोड़ा समय लगा। और इसके बाद वहाँ के राजा जो थे कोलटुंग, उनके गर्दन में कोई बीमारी हो गई और ऐसे कोई घाव हो गया जिसमें कीट कीटाणु थोड़े आ गए, कृमि जिसको कहते हैं, और उसके कारण वो मर गए। इसलिए राजा कोलटुंग का और एक नाम है कृमि कंठ, जिनके कंठ में कृमि या कीड़े आ गए। तो ये सब बातें लेकिन रामानुजाचार्य को पता नहीं था, क्योंकि उस समय तो मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। और रामानुजाचार्य यहाँ पर 12 वर्ष निवास किए, वहाँ से शालीग्राम से आगे तुंडनूर नाम के गांव में आएंगे। तुंडनूर का भी है ना हमारे यहाँ जाना, हाँ 17 तारीख को जाएंगे। थोड़ा शायद परिवर्तन करेंगे, चर्चा करेंगे, हो सके तो कल तुंडनूर जाएंगे, देखिए चर्चा करेंगे। वहाँ तुंडनूर में फिर रहे और वहाँ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और वहाँ से फिर यहाँ पे आए मेलकोटे में। और ये सारा समय जो है इसको 12 वर्ष लग गए। 12 वर्ष में वहाँ क्या चल रहा था रामानुजाचार्य को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन उधर राजा कोलटुंग के दरबार में क्या हो रहा था, चलिए हम वहाँ पे जाके सुन देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ राजा के दरबार में। जैसे ही वो लाए गए कुरेश और महापूर्ण तो तुरंत पहचाने गए नलूरन वहाँ था। नलूरन का ये तो रामानुज नहीं है, ये कुरेश है। और फिर राजा ने कहा कि तुमने हमारे साथ इस तरह का धोखा किया है, फिर अभी तुम यहाँ पे सही कर लो इस पात्र के ऊपर। तो इस पत्र में जो लिखा था शिवात परतरम नास्ति, तो उसे पढ़ लिया। पढ़ के कुरेश ने कहा इसके ऊपर कैसे हम सही कर सकते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। अभी आगे चल के बहुत सी घटनाएं हुई हम सुनेंगे, लेकिन जब कुरेश का अंतिम समय आया, बाद में चल के सारी समस्याओं का समाधान हो गया, कुरेश वापस पहुंच गए श्रीरंगम में और रामानुजाचार्य भी मेलकोटे से वापस आए थे, तो उस समय जब भगवान ने कुरेश से पूछा था कि मुझसे कुछ मांगो, तो सबसे पहली बात जो कुरेश ने मांगी थी वो ये है कि नलूरन को आप क्षमा कीजिए। नलूरन ही वही थे राजा कोलटुंग के दरबार में जिन्होंने विश्वासघात किया था, गद्दारी की थी, और सबसे पहली बात उन्होंने भगवान से यही मांगी कुरेश ने। तो ये होते हैं वैष्णव। तो खैर, तो कुरेश ने राजा से कहा कि ये तो सत्य नहीं है, और उन्होंने बहुत विद्वत्ता से शास्त्रों के आधार पर एक प्रवचन दिया और साबित कर दिया तरह तरह के श्लोकों को कह के कि भगवान विष्णु या नारायण ही परम हैं, भगवान कृष्ण ही परम हैं। लेकिन राजा कोलटुंग ने एक नहीं मानी और कहा कि लगता है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, बहुत चतुर हो, इधर उधर की बातें करके ये जो श्लोकों को तोड़ मोड़ करके अपना कुछ अर्थ डाल रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता ये सब बातें छोड़ो, ये सब शास्त्रों के बाद श्लोक वोक छोड़ो, मैं केवल इतना जानता हूं कि तुमको यहां सही करना है, और यदि सही नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत दंड मिलेगा। तो उस समय सही करने के पहले कुरेश ने उसके नीचे एक और चीज लिखी। कौन सी चीज लिखी? द्रोणम ततः परमस्ति। राजा ने क्या लिखा था? शिवात परतरम नास्ति। और कुरेश ने लिखा द्रोणम ततः परमस्ति, कि द्रोण भी शिव से परे है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वैसे साधारण दुनिया में शिव और द्रोण आदि ये वजन के माप थे, तो शिव थोड़ा हल्का माप था, द्रोण थोड़ा भारी माप। तो ये अर्थ लगा के कुरेश ने कहा द्रोणम तथा परमस्ति, कि शिव से ज्यादा द्रोण है। लेकिन राजा कोलटुंग को बड़ा क्रोध आया कि ये इस तरह की बातें कर रहा है, ये ऐसे हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो इसकी आंखें निकाल दो। उस समय में ऐसे हुआ करता था। तो आंखें निकालने की बात हुई तो कुरेश ने कहा कि आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी मैंने इन आंखों ने तुम्हें देखा है, तुम ऐसे पापी व्यक्ति को देखा है जो वैष्णवों को ऐसे अपराध करना चाहता है, तो ऐसे आंखों की कीमत ही क्या है, ये आंखें अब दुष्ट, ये खराब हो चुकी हैं, इसलिए मैं ही निकाल देता हूँ। और कुरैश ने ही अपनी आंखें निकाल दिए। कहने के लिए तो आसान है, परंतु वास्तव में ऐसे कर दिया कुरैश ने। बिल्वा मंगल ठाकुर ने भी ऐसे किया था एक बार, लेकिन कारण अलग था। तो खैर, कुरैश ने ऐसे अपनी आंखें निकाल दी और वहां से खून 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 बह रहा था, सारा शरीर इनका खून में खून बह रहा था। ऐसा दृश्य जब वहां के जो अन्य मंत्री वगैरह थे उनको देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए ये दृश्य देखकर। और उधर महापूर्ण थे, महापूर्ण से कहा राजा ने, अब तुम कहो। तो महापूर्ण ने भी बहुत अच्छा प्रवचन दिया कि नहीं, लेकिन राजा ने नहीं मांगा माना और कहा कि इनके भी आंखें निकाल दो। तो फिर उनकी भी आंखें निकाल दी गई और दोनों खून बहते फिर उनको निकाल दे दरबार से। अब जाओ, तो ऐसा दंड मिलेगा जो मेरी बातों को नहीं मानेगा, जो शिव जी को परम नहीं मानेगा उसको ऐसे होगा। तो देखिए उस जमाने में वैष्णव को कैसे कैसे अत्याचार सहन करने पड़े। तो आजकल भी ऐसे हुआ, जब प्रभुपाद जी ने इसको आंदोलन शुरू किया था तो उस समय अनेक देशों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको कई जगह उनको दंड दिया गया। कई जगह जैसे रूस में जिस समय साम्यवाद देश था, तो वहाँ उनको पागलखाने में भर्ती कर दिया गया। उनको तरह तरह के इंजेक्शन वगैरह डाले गए जिससे कि वो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और ऐसी भी थोड़ी बहुत घटनाएं हैं जो लोग जिनका देहांत भी हो गया जेल के अंदर। ऐसे सब अन्याय भक्तों के प्रति होते रहे हैं, ये इतिहास है। असुर और भक्त दो प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे इस दुनिया में, ये सत्य बात है। तो ऐसे अत्याचार करने के बाद उनको बाहर भेज दिया गया। अब बाहर महापूर्ण की एक पुत्री थी जो चुप चुप के उनका पीछा करते हुए आई थी। तो उन्होंने आके दोनों को हाथ में पकड़ के ले गए, क्योंकि दोनों देख नहीं सकते थे। वो तो बहुत दुखी हो गई थी, वो तो बहुत रो रही थी उन दोनों की दशा देख के। अब उस राजधानी से बाहर वो निकल गए, बाहर शहर के बाहर खेत में आ गए। वहाँ खेत में आके महापूर्ण और चल नहीं पाए। कुरैश भी रामानुज से थोड़े वर्ष बड़े थे आयु में, और महापूर्ण तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए महापूर्ण की आयु तो बहुत ज़्यादा थी। बहुत वृद्ध होने के कारण अब उनका शरीर इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और वो वहीं पर बैठ गए, आगे नहीं चल पाए और कहा कि अब मुझसे नहीं जाए चला जाता, अब ये दर्द भी सहन नहीं होता और ये खून, ये जो अब हमला हुआ है मेरे शरीर के ऊपर, इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे प्राण त्यागने का समय आ गया है। तो वो वहाँ पे बैठ गए, वहीं पर ज़मीन पर बिल्कुल नहीं चल पाए। तो कुरैश भी बैठ गए, महापूर्ण की पुत्री थी वो भी वहाँ बैठ गए। और फिर महापूर्ण ने कहा कुरैश से कि मैं मेरा सर तुम्हारे गोदी में रख के प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो सर रख दिया और अपने चरण जो हैं वो अपने पुत्री के पैरों पर रख दिया। और उधर दोनों कुरैश और महापूर्ण की पुत्री शोक कर रहे थे कि अरे काश हम श्रीरंगम पहुंच गए होते, तो श्रीरंगम में भी प्राण त्याग दिया होता, कितना अच्छा होता। अब कैसा भाग्य है कि आपको यहाँ ऐसे बीच रास्ते में कहीं जहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं, जहाँ कुछ नहीं, कोई शहर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ आपको प्राण त्यागना पड़ रहा है। तो फिर महापूर्ण ने कहा कि शोक नहीं करना, क्या तुम नहीं जानते कि जहां वैष्णव अपना प्राण त्यागता है भगवान उसके साथ में होता है। एक वैष्णव के साथ हमेशा भक्त, एक हमेशा भगवान रहते हैं। क्या जटायु के साथ जब जटायु की मृत्यु हुई श्री राम नहीं रहे, क्या आप इस चीज को भूल गए हो? और दूसरी बात, क्या आप नहीं जानते कि एक वैष्णव के गोदी में या एक वैष्णव के घर में प्राण त्यागना एक श्रेष्ठ मृत्यु है? बहुत ऊंचा, बहुत इसको ऊंचा स्थान दिया गया है, क्या भूल गए हो इस बात को? और क्या आप ये भी भूल गए हो कि इसी स्थान में, इसी प्रांत में हमारे पूजनीय यमुनाचार्य के गुरु नाथ मुनि ने भी प्राण त्याग दिया था? ये तो पावन भूमि है ही। और अंतिम बात ये भी सुन लो कि क्या श्री वैष्णवों को धाम में जाने की आवश्यकता तो होती है प्राण त्यागने के लिए? यदि ऐसे होता तो फिर सभी लोग सोचेंगे कि यदि हम धाम में प्राण नहीं त्याग पाएंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा, इसलिए यहीं पे मेरा प्राण त्यागना ठीक है, ताकि लोग समझ लें कि एक वैष्णव के लिए भौगोलिक स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। जहां भी वैष्णव प्राण त्यागे उसके लिए भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति निश्चित है, इसलिए तुम चिंता नहीं करना। और इस प्रकार से ये कहते हुए महापूर्ण, जो कि रामानुजाचार्य के दीक्षा गुरु थे, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वैसे रामानुजाचार्य के अनेक गुरु थे, उन्होंने महापूर्ण से दीक्षा तो ली थी, परंतु उन्होंने कांचीपूर्ण से भी शिक्षा बहुत ग्रहण की थी। और ऐसे अनेक थे, जैसे गोष्ठीपूर्ण थे, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली थी। तो महापूर्ण ने इस प्रकार से अपने प्राण को त्याग दिया और आने वाले पीढ़ियों को, हम सबको दिखलाया कि आदर्श मृत्यु कैसे होती है। हाँ, आदर्श मृत्यु इसमें नहीं है कि हम कहीं सड़क पे हमारी मृत्यु हो, आदर्श मृत्यु इसमें है कि किस भावना में हमारी मृत्यु हो और किस कारण से महापूर्ण, हालांकि इतने वृद्ध थे, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ऐसे कहावत है कि यदि हमारे लिए कोई मरने के लिए कारण नहीं है, ऐसा कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है, तो हमारे जीवन के लिए भी कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन के लिए एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हों। यदि ऐसे हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो जीना भी हमारे लिए व्यर्थ है। और ये महापूर्ण ने सिद्ध करके दिखाया। फिर महापूर्ण की मृत्यु हम सब के लिए एक उपदेश इसलिए है कि हम जान सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, चाहे हमारे मृत्यु कहीं भी क्यों ना हो, होनी है ना एक दिन, तो जब होगी तो जहां भी हो कोई बात नहीं। यदि हम केवल कृष्ण भावनामृत में रहें, जब तक भगवान हमारे सांसों को हमारे शरीर में रखना चाहते हैं, तब तक हम ये सांस लेते रहें कृष्ण भगवान के लिए, और हर सांस के साथ कृष्ण का ही नाम लेते रहें, और ये सांस से निकलते निकलते हम सेवा भगवान की करते रहें वैष्णवों के संग में रह के, तो फिर हमारी मृत्यु कैसे भी क्यों ना हो, जहां भी क्यों ना हो, हमें कोई परवाह नहीं, भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। बल्कि जो 6 चीजें हैं जो वरदराज ने रामानुजाचार्य को बताई थी, एक बार रामानुजाचार्य ने कांचीपूर्ण से पूछा था कि मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं वरदराज से ये प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। ये कांचीपुरम की बात है, बहुत पहले की बात। तो अब कांचीपुरम इतने शुद्ध भक्त थे कि वरदराज उनसे बात करते थे पुजारी के द्वारा, पुजारी के माध्यम से। तो जब एक बार कांचीपुरम अगले दिन कांचीपूर्ण वरदराज के सामने गए, तो वरदराज ने उस पुजारी के द्वारा 6 बातें कही, और ये 6 बातें रामानुजाचार्य के 6 प्रश्नों के उत्तर थे। अब कांचीपूर्ण को यह भी नहीं पता था कि रामानुजाचार्य के क्या प्रश्न हैं। रामानुजाचार्य ने केवल इतना कहा था कि मेरे प्रश्न हैं और इनका उत्तर मुझे कांची मुझे वरदराज जी से आप कृपया दिला दीजिए। तो जब कांचीपूर्ण आए सामने तो वरदराज जी ने ये 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब छठा जो प्रश्न था उसका उत्तर इस प्रकार से था कि यदि मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरण न भी करे फिर भी मैं उसे ले जाऊंगा मेरे धाम। बड़े प्रसन्नता की बात है ना। लेकिन इससे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है फिर आज से थोड़ा भक्ति को छुट्टी दे दे, हम भक्त तो है ना, तो भगवान सोचेंगे हमारे बारे में नहीं। ये किन भक्तों की बात कर रहे हैं? जो शुद्ध भक्त हैं। किसी कारणवश मृत्यु ऐसे हो जाए, ऐसे अवस्था में हो जाए जब हम कृष्ण का स्मरण न कर पाए, उदाहरणार्थ किसी की मृत्यु नींद में हो जाए, किसी की मृत्यु अचानक अपघात के कारण हो जाए, ये ऐसे कई अवस्थाएं हो सकती हैं जिनमें जब मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति भगवान का स्मरण न कर पाए। तो ऐसे अवस्थाओं में भगवान कहते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं ऐसे भक्तों को अवश्य मेरे धाम में लौटा के ले जाऊंगा। यदि हमने जीते जी कृष्ण का स्मरण सतत किया है तो निश्चित ही मृत्यु के समय स्मरण होगा भगवान का। परंतु किसी कारणवश यदि अवस्था पे या परिस्थिति के हिसाब से हम स्मरण नहीं कर पाते हैं तो भगवान वचन देते हैं कि फिर भी वो हमें ले जाएंगे उनके धाम में। तो इसका मतलब ये है कि धाम में प्राण त्यागने की बात तो दूर रही, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण ऐसे कोई अद्भुत परिस्थिति के कारण नहीं भी कर पाता है फिर भी भगवान ऐसे भक्त की रक्षा करेंगे अवश्य। तो कितने प्रेरणात्मक ये सब घटनाएं हैं। तो ऐसे महान वैष्णवों के कथाओं को सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है, उत्साह मिलता है, साहस मिलता है कि हाँ हम भी भक्ति करें, हम असफल नहीं होंगे। कई बार भक्तों को लग सकता है कि ये प्रेमा भक्ति इतना ऊंचा स्तर है, हम क्या पहुंच पाएंगे कभी भी, ये दुनिया की इच्छाओं से वासनाओं से मुक्त होना कितना मुश्किल है, कि हमारे हृदय कभी भी शुद्ध पूरी तरह से हो सकता है, ऐसे संशय कभी कभी भक्तों के मन में आते हैं। परंतु ऐसे घटनाओं से ऐसी लीलाओं से हमारा साहस बढ़ सकता है कि हाँ यदि हम हृदय पूर्वक भक्ति करें भगवान की तो अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उधर कुरेश चले गए वापस, थोड़े लोग आए उसके पहले, जब महापूर्ण की ऐसी मृत्यु हो गई तो थोड़े लोग आए कि क्या हम कुछ मदद करें, तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे उद्देश्य से आए हैं, उनका नहीं। थोड़ी देर बाद भगवान की योजना से थोड़े श्री वैष्णव वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ कुरेश और महापूर्ण हैं, फिर उनकी सहायता से महापूर्ण की अंतिम क्रियाएं हो गई, कुरेश ने कर ली और फिर कुरेश को श्रीरंगम ले गए ये श्री वैष्णव। श्रीरंगम में जाकर एक दिन वो श्रीरंगम मंदिर में जाना चाहते थे कुरेश, आंखें तो नहीं थी अब लेकिन फिर भी भगवान के सामने जाना चाहते थे। तो वो गए दरवाजे पे, मंदिर के द्वार पे आ पहुंचे। यदि हम मंदिर में नहीं जाएं तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान का दर्शन करना ही ये हमारा उद्देश्य नहीं होता कि भगवान भी हमें देखें, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान देखते हैं भक्तों को मंदिर में उनको भी आनंद होता है कि मेरे भक्त मेरा दर्शन करने आ रहे हैं। इसलिए हम जाते हैं मंदिरों में भगवान का दर्शन करने के लिए और भगवान को भी आनंद देने के लिए, हाँ हम आपकी सेवा में हैं, हम आपका दर्शन करने आए हैं, हमारी हाजिरी देने के लिए। तो कुरेश देख तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी गए। वैसे जब दोनों की आंखें निकाली गई थी तो कुरेश और महापुर ने सोचा था एक आंख के लिए आंख, कि हमारी भौतिक आंखें तो चली गई लेकिन कृष्ण अब हमें दिव्य आंखें देंगे। और कुरेश की कथाएं तो बहुत सुंदर है, आगे चल के शायद इस बार हो या ना हो चर्चा, देखेंगे। लेकिन कुरेश को दिव्य दृष्टि मिल गई भगवान का सुंदर रूप देखने के लिए। आगे चल के जब कुरेश, जब रामानुजाचार्य मेलकोटे से लौट के आए थे वापस श्रीरंगम में और कुरेश के प्राण त्यागने का समय आया था, तो रामानुजाचार्य ने कुरेश से कहा कि जाओ और भगवान से मांगो कि मुझे दृष्टि चाहिए फिर से। तो कुरेश ने जाके केवल दिव्य दृष्टि मांगी वैकुंठ में। तो जब रामानुज को पता चला, उन्होंने डांटा कि कुरेश मैंने तुम्हें कहा था इन आंखों की दृष्टि मांगनी चाहिए, केवल वो दिव्य दृष्टि नहीं वैकुंठ में। दोबारा गए और फिर भगवान ने कहा पुजारी के माध्यम से कि मैं वो दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे कि कुरेश मुझे देख पाए और रामानुज तुम्हें भी देख पाए। फिर रामानुज ने और तर्क नहीं किया। इस तरह से कुरेश हालांकि भौतिक दृष्टि से अंधे थे, परंतु श्री रंगम में रंगनाथ देव की मूर्ति वो देख सकते थे और रामानुजाचार्य को देख सकते थे। केवल दो व्यक्तियों को देख सकते थे और किसी चीज को नहीं देख सकते थे। तो खैर, जब इस बार वो मंदिर में जाना चाहते थे तो वहाँ सिपाहियों को रखा गया था, राजा कोलोटुंग ने भेजा था कि जो रामानुजाचार्य के अनुयायी हैं उनको अंदर जाना मना है। तो जैसे ही कुरेश पहुँचे वहाँ तो सिपाहियों ने कहा कि आपको अंदर जाना मना है, लेकिन आप इतने अच्छे सज्जन हैं, व्यक्ति हैं, तो हम आपको जाने के लिए छोड़ देंगे, परंतु एक शर्त है कि आपको यहाँ घोषणा करनी है और लिखना है कि आप रामानुज को आज से नहीं मानेंगे। तो कुरेश ने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसे संभव है, इससे अच्छा कि मैं रंगनाथ देव को त्याग दूं, मैं कैसे रामानुजाचार्य को त्याग सकता हूं। तो यदि मैं रामानुज के साथ नहीं रह सकता तो मैं श्रीरंगम भी नहीं रहूंगा और अपने परिवार को साथ में लेकर कुरेश श्रीरंगम छोड़ के दूसरे स्थान में चले गए। ये सारी घटनाएं हुई रामानुजाचार्य के श्रीरंगम छोड़ने के बाद में, लेकिन ये सारी घटनाएं रामानुजाचार्य को मालूम नहीं थी। जब यहां अनेक वर्ष बीत गए तो फिर श्री वैष्णव कोई आए श्रीरंगम से और रामानुजाचार्य ने उनसे ये कथा, ये सारी खबरें सुन ली। तब रामानुजाचार्य को इतना दुख हुआ कि वो बहुत रोए और कहा कि अब, और उनको ये भी खबर मिली बाद में चल के कि अब राजा की मृत्यु हो गई है। फिर जाके रामानुजाचार्य आगे चले और वापस श्री रंग में चले गए। तो और कभी कल के दिन और कथा करेंगे कि वहाँ जब रामानुजाचार्य आ रहे थे श्रीरंगम छोड़ के, फिर जंगल से होते हुए शालिग्राम गांव में आए, फिर शालिग्राम गांव में आकर वहाँ जो उन्होंने थोड़ी बहुत लीलाएं किए और फिर तोंडनूर नाम के गांव में आए। तो जैसे भी हमारा टाइम टेबल है उस हिसाब से कल हो या परसों हो हम वहाँ जाएंगे। तो फिर कल ये कथा तोंडनूर की कथा करेंगे और आगे जो मेलकोटे में हुआ रामानुजाचार्य की कथा वो भी हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।